वास्तव में यह कुरान वह मार्ग दिखाता है जो सबसे ज्यादा सीधा है, और ईमान वालों को जो अच्छे काम करते हैं शुभ सूचना देता है कि उनके लिए बड़ा बदला है।
कुरान ईश्वरीय चमत्कार।
श्रोताओं, कार्यक्रम कुरान ईश्वरीय चमत्कार की एक अन्य कड़ी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आशा है पसंद करेंगे। मैं हूं जहरा जैदी और कार्यक्रम में मेरा साथ दे रहे हैं हसन अब्बास। तो आइए पहले सूरह शुअरा की आयत क्रमांक 128 से 130 तक की तिलावत सुनें।
أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين।
क्या तुम प्रत्येक उच्च स्थान पर अपनी इच्छा के चलते व्यर्थ की एक ऊंची इमारत का निर्माण करते रहोगे और भव्य महल बनाते रहोगे जैसे सदैव बाकी रहोगे? और जब तुम किसी को पकड़ते हो तो निर्दयी अत्याचारियों की भांति पकड़ते हो।
इससे पहले कहा गया कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आद नामक जाति के मार्गदर्शन के लिए भेजे गए थे, और वे सदैव उस जाति के लोगों को नसीहत करते और बुरे कर्मों से रोकते रहते थे। ये आयतें कहती हैं कि हज़रत हूद के विरोधी जो धनवान और सुखभोगी लोग थे, दिखावे व घमंड के लिए ऊंचे ऊंचे स्थानों पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाया करते थे, जबकि उन्हें उनमें रहने की कोई आवश्यकता नहीं थी और वे केवल अपनी आंतरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए वहां जाया करते थे। अपने घरों और महलों के निर्माण में वे अपव्यय और दिखावे में डूबे हुए थे कि मानो उन्हें संसार में सदैव रहना है और उन्हें कभी मौत नहीं आएगी।
आद जाति के संसार प्रेम और माया मोह के उल्लेख के बाद जो उसकी विशेषता थी, हजरत हूद अलैहिस्सलाम उसकी एक अन्य बुरी विशेषता की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि तुम लोग एक दूसरे से स्नेह नहीं करते और किसी को क्षमा नहीं करते। तुम जब किसी से क्रोधित हो जाते हो तो अत्याचारियों की भांति अपनी सीमा को लांघ कर दूसरों पर अत्याचार करते हो। उल्लेखनीय है कि आद जाति के लोग इतने निर्दयी व हिंसक थे कि छोटे से अपराध पर भी अधिकतम दंड दिया करते थे।
इन आयतों से हमने सीखा कि धर्म की संस्कृति में हर वो काम जो दिखावे और घमंड के लिए हो निंदनीय है, चाहे उसका कलात्मक मूल्य ही क्यों न हो।
आलिशान और महल जैसे घरों का निर्माण माया मोह में ग्रस्त होने और प्रलय से निश्चेतना का कारण बनता है, जबकि महल कभी भी मनुष्य को अमर जीवन प्रदान नहीं करते।
घर और इमारतों के निर्माण में अन्य सांसारिक कार्यों की भांति संभावित रूप से कुछ अप्रिय बातें हो सकती हैं जिनसे दूर रहना चाहिए, जैसे अपव्यय, दिखावा, ऐश्वर्य, निश्चेतना और माया मोह।
आइए अब सूरह शुअरा की आयत क्रमांक 131 से 134 तक की तिलावत सुनें।
فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون।
अतः ईश्वर से डरो और मेरा अनुसरण करो, और उस ईश्वर से डरो जिसने तुम्हारी उन चीज़ों से सहायता की जिन्हें तुम जानते हो। उसने चौपायों और पुत्रों के माध्यम से तुम्हारी सहायता की, और इसी प्रकार बाघों और सोतों के माध्यम से।
हजरत हूद अलैहिस्सलाम द्वारा अपनी जाति के अप्रिय कर्मों और व्यवहार की आलोचना के बाद इन आयतों में आद जाति को ईश्वर की ओर से दी जाने वाली अनुकंपाओं का उल्लेख किया गया है, और इस जाति के लोगों से कहा गया है कि वे ऐसे महान ईश्वर के आदेशों की अवहेलना न करें और उनकी बातों का अनुसरण करें ताकि उन्हें मुक्ति व कल्याण प्राप्त हो जाए।
हज़रत हूद जिन अनुकंपाओं का उल्लेख करते हैं वे दिखाई देने वाली अनुकंपाएं हैं जो उनके आसपास मौजूद थीं। शीतल पानी के सोते, फलों के बाग, विभिन्न प्रकार के अनाज, पशु और चौपाए जो उनके लिए आहार का साधन भी थे और काम व भार ढोने का माध्यम भी, और दूसरी ओर संतान जो उनके लिए खेती व पशुपालन हेतु आवश्यक श्रम बल का काम करती थी।
इन आयतों से हमने सीखा कि ईश्वर से न डरना सभी व्यक्तिगत व सामाजिक बुराइयों की जड़ है, अतः सभी पैगंबरों की पहली सिफारिश ईश्वर से भय और सदकर्म रही है।
ईश्वर का भय और सत्कर्म ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्रदान की गई असंख्य अनुकंपाओं पर एक प्रकार की कृतज्ञता है। यदि हम ईश्वर की इन अनुकंपाओं के बदले में कुछ नहीं करते तो कम से कम उसके आदेशों की अवहेलना तो न करें।
आइए अब सूरह शुअरा की आयत क्रमांक 135 और 136 की तिलावत सुने।
قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين।
निश्चय ही मुझे तुम्हें एक बड़े दिन मिलने वाले दंड का भय है। आद जाति के लोगों ने कहा, चाहे तुम नसीहत करो या नसीहत करने वाले न बनो, हमारे लिए एक समान है।
इन आयतों में हजरत हूद अलैहिस्सलाम प्रेम व स्नेह के आधार पर, जो सभी ईश्वरीय पैगंबरों की विशेषता है, अपने विरोधियों से कहते हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो स्वयं तुम्हारे ही हित में है और मुझे इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। मुझे न तो तुम्हारा धन चाहिए और न ही मैं तुम पर श्रेष्ठता जताना चाहता हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारे कर्मों के अंजाम से चिंतित हूँ कि इतनी अधिक अवज्ञा व उद्दंडता के कारण तुम्हें कड़ा दंड भुगतना होगा।
आद जाति के लोगों ने, जो अपने धन और संपत्ति में मस्त थे, हजरत हूद की बातों पर विचार करने और उनसे नसीहत लेने के बजाय बड़े घमंड और अशिष्ट ढंग से कहा कि अकारण अपने आप को कष्ट ना दें, इन बातों का हम पर कोई प्रभाव होने वाला नहीं है।
इन आयतों से हमने सीखा कि जो लोग घमंड और निश्चेतना में ग्रस्त हो जाते हैं उन्हें सचेत करते रहना चाहिए, चाहे सत्य बात का उन पर प्रभाव हो या न हो।
यदि लोगों में सत्य बात को स्वीकार करने की योग्यता व तैयारी न हो तो ईश्वर के सबसे प्रिय बंदों की बातों का भी उन पर प्रभाव नहीं होता।